होता तो उसका पानी इतना खारी क्यों? वो तो मीठा होता फिर। इसलिए कहते वास्तव अमृत समुद्र में नहीं, कहते अब तो बिधो, बिधो मतलब होता है कहते चंद्रमा में, कहते चंद्रमा में भी अमृत है। दिन भर सूर्य का किरण से हम लोग झुलस जाते हैं, लेकिन जब चंद्रमा उदय हो उसका जो किरण बड़ा शीतल है।
सनातन धर्म है, सनातन धर्म एक ही है जिसका प्रेम कृष्णा दर्शन करो, प्रेम की प्रतिमूर्ति है इसके, उनके चरणों में प्रीति या प्रेम को उनकी उपासना ही सनातन धर्म है। शरीर जब नित्य नहीं है तो इस शरीर से दूसरे शरीर का संबंध, जो माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार का संबंध, यह अनित्य है। यह नित्यता नहीं है, माता पिता भाई बंधु परिजन इसकी प्रतिष्ठा बदलते रहेंगे, किंतु आत्मा नहीं बदलेगी, परमात्मा भी नहीं बदलेंगे। इसलिए इस तरीके द्वारा जो कुछ किया जाता है ये कुछ शुभ कर्म अशुभ कर्म हो सकते हैं सनातन धर्म में, ये भी समझिए सनातन धर्म की चरम सीमा कृष्ण कर्म, क्योंकि वह रामचंद्र जी वही कृष्ण ही धर्म की मर्यादा का पूर्ण करने के लिए आए। इनके परिजन भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान सुग्रीव विभीषण इत्यादि आए, उन्होंने मर्यादा का होगी माता पिता के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, भाई के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है, स्त्री का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, जिसे लोग सुशांत से जगह करके उनका उद्देश्य जो भगवत भक्ति है ये प्राप्त। सनातन धर्म को पहुंचने के लिए वर्णाश्रम धर्म एक सोपान है, और इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा गया, उस भागवत धर्म को या भगवान के प्रति। किंतु यहां पर और समाज की व्यवस्थाएं भागवत धर्म के अनुकूल और सोपान स्वरूप नहीं है तो वो सनातन नहीं है। भागवत के अतिरिक्त ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां पर की आत्मा को अजर अमर समझा जाए, परमात्मा को अजर अमर समझा जाए। शरीर को भी देख रहे व्यक्त है, शरीर खत्म हो गया सब कुछ खत्म, किंतु भारत क्या है सनातन सनातन धर्म की कहते देखो आराम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे मर्यादा किसी का किए हैं, हनुमान जी उनके प्रिय सेवक हैं, क्या हनुमान जी अपने दूसरा काम को दे देंगे, क्या हनुमान जी पंच पर्वत करके रामचंद्र जी के गलबनिया डाल सकते हैं, हनुमान जी अपने कंधे पर ले लेंगे रामचंद्र जी को आराम के लिए, किंतु क्या ये हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कंधे पर बैठ सकते हैं, मर्यादा में बदले गए हैं भगवान राम जी। और यहाँ तक एक शुक्र ने जगह की आवश्यकता से बुला दिया, सीता जी को मर्यादा लक्षण के रूप में जैसे कि मर्यादा लक्षण नहीं था, कभी रावण के शरीर से स्पष्ट हो जाने से उनको प्रत्याग कर दिया, एक बार नहीं दो बार, किंतु राम कृष्ण वो प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की मर्यादा है उसकी रक्षा करते हैं, ऐसा श्री रामचंद्र जी या उनके पास को नहीं कर सकते। और देखो कृष्णा रसो वही गाय हैं, इसलिए रस का आधार है रात, या दूसरा नाम रात है, रात के अतिरिक्त यहां तक कि मथुरी कृष्ण वासुदेव कृष्ण यहां तक कि राम नृसिंह देव भगवान ही है, ये लोग रस के जो कि मर्यादा की स्थापना करने के लिए है। और कृष्ण ही ये कहते हैं रात के रामचंद्र जी के लिए जब जनकपुरी ले गए उनको प्रेम करते सीता जी की शब्द से नहीं किया, राम पर आपका मन को जो उठाओ तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो और वो भी एक राम की यादें नहीं जब मैं कृष्ण होकर के ब्रज में आऊंगा उसमें तुम सबकी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा तो वो भी होकर के आना। इसी तरह से समझिए कृष्ण में ऐसा कोई भाव नहीं है जो नहीं है मर्यादा है कि धर्म की मर्यादा को रखने के लिए संतों की रक्षा के लिए असुरों का विनाश के लिए महाभारत युद्ध हुआ उसने सब असुरों को खत्म कराया सबका विनाश कराया और एक ऐसी परिस्थिति लाई जिससे कि उसके ऊपर में उस मंच पर श्रीमद्भागवत हुआ आपका जब तक वो असुर भाग्यशाली लोग जब तक ये तब तक नहीं होगा इन्हें गुहार धारण करने के बाद जाते उन सब असुरों का विनाश किया और विनाश करने के बाद में सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रवचन का अवसर। यह भगवान राम या कृष्ण जो लीलाएं कर रहे हैं इसलिए उन लीलाओं में इतनी शक्ति है जो राम में भी शक्ति नहीं है कृष्ण में भी शक्ति क्या शक्ति है उन्होंने अपनी सारी शक्ति दया जैसा कुछ नामों में बात किया है विशेष करके कलयुग के कृष्ण नाम है महा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जो राम कृष्ण नहीं कर सकते उनका नाम ये कर देगा कि इतनी बात के साथ में भजन करेंगे ये सनातन धर्म में आपको अन्यथा नहीं इसलिए मैं चाहता हूं आज तो समय कम है आज बोलने के लिए नहीं आया था कि लोगों ने बड़े आग्रह से बुलाया मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कभी हम इसके बारे में आएंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया अधिक से अधिक व्यक्ति आए कि विषयों विषयों को समझ सके राम का मर्यादा हुआ कि रक्षण क्या चीज है राम की लीलाएं कैसी है उसकी क्या कभी शिक्षाएं हैं इस पर हम विचार करेंगे और आज यही पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे बुलाया इसमें उन लोगों का कल्याण हो और उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ अब एक मिनटों के बाद में हम लोग समाप्त करें
अपने वर्मा राष्ट्रधर्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार सप्तांग दंडक प्रणति ज्ञापन करता हूँ तत्पश्चात उपस्थित विदंडी वैष्णव वैष्णवीगण और उपस्थित सज्जन वृंदा मैंने कल कहा था कि हम लोग सभी सुख शांति चाहते हैं किंतु जगत भर में देखते हैं कि सुख शांति नहीं क्यों ये जेल खाना है कल विस्तार पूर्वक उसको बतलाया इसलिए इस संसार में सुख और शांति ढूंढे ये बुद्धिमान लोग नहीं खोजते वो जानते कि ऐसा ही है क्योंकि हम भगवान को भूले शरीर में आसक्त इसलिए भगवान बड़े ध्यान है व्यक्ति की हमारा दास दासी हमें जन्म जन्मांतरों से फूला हुआ पेटाप ग्रस्त होकर के बड़ा दुख पा रहा है इसलिए दया के मारे स्वयं कभी कभी गोलोक वृंदावन से पधारते हैं साकेत धाम से पधारते हैं और कभी अपने प्रभावशाली आचार्यों को भक्तों को आचार्य के रूप में भेज करके अपनी लीला कथाओं के माध्यम से नाम के माध्यम से जगत का कल्याण करते हैं। भगवान ने अपनी लीलाओं में लीला कथाओं में और भगवान अपने नाम में अपनी सारी शक्तियों को उस संचयित कर दिया है, जो वो खुद नहीं कर सकते उनका नाम कर देगा, उनकी लीला कथाएं कर देंगे। वो लीला कथाएं भी दया करती हैं, प्रभु की ही हैं, प्रभु से अब है। इसलिए भगवान स्वयं जगत में आकर के कौनामयी माधुर्यमयी मर्यादामयी लीलाओं को करते हैं। कभी कभी प्रहलाद भक्त को रक्षा करने के लिए निशिंग रूप में आते हैं, अपना भक्त वात्सल्य गुण दिखलाते हैं। इस तरह से इन लीलाओं को जो श्रवण करेगा उसको भगवत भक्ति होगी और अंत में भगवान के निकट पहुंचेगा। इसीलिए कृष्ण ही पवित्रता युग में आराम के रूप में पधारे और अपने स्वान भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को भी ले आए, अपनी प्रिया जी सीता जी को भी ले आए और ऐसी मनमोहक करुण लीलाएं की जिसे जगत समर्पित रह गया है। जाने के बाद में हनुमान जी को छोड़ गए, तुम रहो और हमारी लीला कथाओं का भी तुम्हें प्रचार हो, इस पर तुम प्रचार करो। इसलिए हनुमान जी के इच्छा के विपरीत, भगवान के इच्छा के विपरीत ही हनुमान जी को इस जगत में रहना पड़ा। जैसे कृष्ण लीला के पश्चात सुखदेव गोस्वामी जो प्रिया जी के सुख थे उनको यहाँ रहना पड़ा और सुखदेव जी ने भागवत की कथा सबक विश्व में प्रचार किया। ऐसे ही हनुमान जी भी यहाँ रहे और भगवान की जहाँ भी कथा होती है वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ भगवान का नाम होगा वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये हनुमान जी की विशेष विशेषता है। कभी कभी तो वो हरि कथा के प्रारंभ में आते हैं, यहाँ तक कि कुष्ठ रोगी का रूप धारण करके आते हैं जो उनको कोई तंग न कर, और जब लीला समाप्त हो जाएगी सब चले जाते हैं तब उस स्थल को कथावाचक सबको प्रणाम करके प्रतीत जाते हैं। हनुमान जी राम के एकांतिक प्रिय है, इसलिए आएगा, इसलिए भगवान ने अपने लीला कथाओं को जगत में छोड़ करके और हनुमान जी को छोड़ करके उसके द्वारा जगत का आश्रित फल ज्ञान है। अभी शत्रु की बात है कि प्रचेताओं के वंश में महर्षि वाल्मीकि एक ऋषि हुए, वे सर्वज्ञ, वे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं। तो एक समय तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी कहाँ है, प्रयाग के पास ही में कोई नदी थी, अभी है या नहीं नहीं कह सकता, उसी के पास में जो गंगा जी में मिलती थी, तमसा नदी के किनारे प्रयाग के पास में जहां पर सिर्फ भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, भारद्वाज भरद्वाज ऋषि प्रयाग में ही रहते थे, वाल्मीकि जी का आश्रम, वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम को उनको दे दिया था। यहाँ पर राम भी आए थे भरद्वाज से मिले, लक्ष्मण जी थे भक्त भी आए थे उनसे मिले, बहुत प्रभावशाली थे। मेरे को मैं राम की सारी सेनाओं को भक्त जी के सेनाओं को खिला दिया, रहने के लिए बहुत सुंदर विश्राम गृह बनाया, तो ऐसे ये भारद्वाज ऋषि थे जिनके गुरु वाल्मीकि जी हैं। एक दिन अपने इस शिष्य को लेकर के भारद्वाज जी को लेकर के वाल्मीकि जी तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। वो जो ही स्नान कर रहे थे, अब स्नान करके ऊपर आने वाले थे, तो उन्होंने देखा एक पेड़ की डाल पर क्रौंच और उसकी पत्नी क्रौंची दो पक्षी बैठे हुए थे और एक बहेलिया पीछे से आकर अपने पाणों से क्रौंच का वध कर दिया। ये लोग दोनों क्रौंचाओं क्रौंची अपने मुख को चोंचों को मिला करके बड़े प्यार से बड़े प्रेम से बात कर रहे थे। किसी में बहेलिया ने मारा बाण, वो समझता है कि ये सब तो चीजें हमारे खाने पीने के लिए, जैसे आज के कुछ लोग करते हैं, इसलिए बाण मारा। उनकी भावना को नहीं समझता, आज ये भी इतने प्रेम से परस्पर बात कर और उसी बीच में बाण लगा हृदय में और बस इस पार से उस पार हो गया और वो छटपट करता हुआ था। वाल्मीकि जी ने देखा ऐसा घोर अन्याय। वाल्मीकि जी ऋषि कैसे थे, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म की अनुभूति रखने वाले सर्वज्ञ और संसार के देवता की किसी के मरने जीने से उनको कोई लाभ हानि नहीं। वो जानते थे कि आत्मा अजर, किंतु फिर भी बड़े शोक ग्रस्त हो गए और बोले बहेलिए मानसाद अरे बहेलिया, तुमने कामने मोही बड़े प्यार से बातचीत करने वाले क्रौंच और क्रौंची में से क्रौंच को मार डाला, किस लिए मारा? आप फिर से इस वन में नहीं आ सकते, यदि आएगा तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा, मारे जाओगे अपने आप, मत आना, तुमको शांति कभी जीवन में ना मिले। इसके बाद में जब वो अभिषम पाप देखते थे तो कहते हैं कि बेटे भरद्वाज, आज मैंने ये क्या कहा, इन लोगों को जगत के दुख और सुख को देख करके मैं मुग्ध हो गया, मुझको तो ऐसा होना नहीं चाहिए। करोड़ों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, मैं जानता हूं कि आत्मा अजर है, अमर है, किंतु मुझको ऐसा क्यों हुआ और कुछ स्थिर न कर सके और अपने आश्रम में लौटे, चिंता करके क्यों? अच्छा, जो मैंने ये अभिषम पाठ दिया, ये तो चार चरणों का एक छंद है, 16-16 अक्षर एक एक उसके चारों भागों में से एक एक भाग में है और इसको देखते हैं कि सभी छंदों में गाया जा सकता है, वीणा पर गान किया जा सकता है, ये ऐसा कैसे हो गया, हमारे मुख से निकल गया, मैंने जानबूझकर कर नहीं निकाला इसको। इतने में थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी वहां पर, ब्रह्मा जी को देख करके वाल्मीकि जी ने उठ करके उनका अभिवादन किया, उनको दंडवत प्रणति की और फिर कहे, आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोक पितामह चतुर्थ ब्रह्मा जगत के गुरु, जगत का यह सृजन करने वाले आप हमारे यहाँ पर पधारे, कृपा करके अपना आदेश दे, मैं क्या करूं। सुन करके ब्रह्मा जी बोले, सवेरे की बात याद है जब तुम स्नान करने गए तमसा नदी के किनारे, तुमने देखा क्रौंच क्रौंची को मरते हुए अब सुनने के श्लोक चाकरण वक्त समस्त स्वरों में गायन करने वाला तुम्हारे मुख से के श्लोक निकलाता कहां तो निकलाता था, मैं इसी की चिंता में था ये कैसे निकल गया। मेरी कृपा से निकला, तुम सौभाग्यवान हो। अब तुम एक बात करो, जिस प्रकार का छंद चार चरण वाला तुमने लिखाया है और इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं और समस्त स्वरों में ताल में इसको गाया जा सकता है, अब राम की शादी लीलाओं का तुम वर्णन करो। प्रभु यही चाहते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं तुम्हारे पास आया, इसलिए तुम छंदों बद्ध करके सात कांडों में रामायण की रचना करो, जिसने राम की मधुर औदार्यपूर्ण लीलाओं का वर्णन। उन्होंने कहा कि मैंने तो देखा नहीं कभी, राम की लीलाओं को तो मैंने अनुभव नहीं किया, फिर मैं कैसे वर्णन करूंगा। और नूतन ठीक किया और नूतन कर दिया।
रामलीला अनुभव नहीं हुआ, तेरी कभी नहीं देखा।
हाँ, इसकी अनुभूति नहीं हुई।
है उनमें से हमारे ब्रह्म महात्मा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आदि गुरु हैं। वे उन्होंने कहा ठीक है, तुम समाधि ग्रस्त हो, भक्ति के द्वारा चित्त को समाहित करो और समाधि में मेरी कृपा से सब लीलाओं को देख सकोगे। ठीक ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, व्यास देव जी सर्वज्ञ होते हुए भी, भगवान के अवतार होते हुए भी, यहां तक कि उन्होंने वेदों का भी भाग किया, अपने शिष्यों को चारों वेदों को अध्ययन कराया, महाभारत और पुराणों की भी रचना की, जिस महाभारत में ये श्रीमद् भगवद गीता है इसके भी उन्होंने रचना की और सबका अधिकार जिन में है ऐसे पुराणों का भी, महाभारत की भी रचना की, अंत में समस्त वेद और उपनिषद के बाणियों का सामंजस्य करने के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की। आचार्य वही है जो इन वेदांत का कोई भाष्य लिख सके, इसलिए रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित और आचार्य शंकर, इन चारों ने अपने अपने संप्रदाय के लिए एक एक भाष्य लिखा। यहां तक कि निम्बार्काचार्य ने भी पारिजात भाष्य इत्यादि लिखा। इसके बिना हुए गहन अध्ययन किए बिना अपने संप्रदाय का आचार्य नहीं हो सकता। तो उन्होंने सब कुछ किया और उसकी सुंदर व्याख्या अपने आप की, जिन श्लोकों का परस्पर विरोधी भाव था उनको भी सामंजस्य करके ले आया, वो श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी के रूप में केवल प्रकाश किया, जिसको ब्रह्मा जी ने उनको दिया था, या भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दी। ये करने पर भी उनको मानसिक शांति नहीं थी, इतने में नारद ऋषि आए, उनके गुरु इस भगवान के भी गुरु कोई अनहोनी बात नहीं। बिन गुरु भवन भी करे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा के समान ज्ञानी और शंकर के समान भी ज्ञानी व्यक्ति हो बिनी गुरु के, इस भवसागर को हम नहीं पार कर सकते। आजकल पाश्चात्य भाषा को सीख करके गुरु का नाम सुनते ही फड़क जाते हैं, विशेष करके नई नई संप्रदाय निकली है, नए नए आजकल सोसाइटियां इत्यादि निकली हैं। आजकल कोई माया का प्रभाव वाली कोई मायावती भी है जिनको मनुपादियों से चिढ़ है, सुनते ही कांपने लगती है, होश में नहीं रहती, किंतु नहीं जानती है कि मनु उनके भी पाप है, उनके पाप के भी पाप। उन्होंने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है, उनकी समझ में खाक पत्थर नहीं आता। जिस दिन आ जाएगा उनके भक्त हो जाएंगे। ये मनुष्य मानव निकला है उसी मनु महाराज से, तो उसके बिना वो कैसे पैदा हो जाएंगे। तो वो लोग गुरु के नाम से चिढ़ते हैं, विशेष करके आधुनिक अंग्रेजी पढ़ने वाले कॉलेज और स्कूल में जिनको पारमार्थिक शिक्षा नहीं हुई, कह लेंगे टीचर, ये तो बात ठीक है, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, ये तो सब कह देंगे, किंतु गुरु नहीं। किंतु वो शब्द शब्द हैं, वो सीमाबद्ध शब्द अर्थ वाले, और गुरु व्यापक शब्द है। गुरु माने भारी, गुरु माने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर करके प्रकाश ला दें, वो गुरु गुरु है। यह संसार अंधकारमय है, आसक्ति इस अंधकार की जननी है। हम लोग समझते हैं कि बड़े बुद्धिमान हैं, किंतु ये नहीं जानते कि अभी मृत्यु है। हमारे बहुत आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री का आप लोग नाम जानते हो, ताशकंद में गए रशिया के लीडरों से, पाकिस्तान के लीडरों से मिलकर के शांति के लिए बात की, और दूसरे दिन खत्म हो गए। भारतवर्ष के चुने हुए प्रतिनिधि थे, बुद्धिमानों में एक, वो बुद्धि और जानकारी गई कहां? साथ ही साथ खत्म। इस पर किसी का बस नहीं चलता। इसलिए व्यास जी, काजी गुरु जी, ये सब तो मैंने किया, किंतु मन में शांति नहीं है, अशांति का कारण क्या है मेरी नहीं समझ में नहीं आता। तब उन्होंने बतलाया, तुमने अर्थ धर्म काम मोक्ष की जो बात है जगत के लिए बतलाई है, इसे संसार का कल्याण होने वाला, तुमको इसे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान की लीला कथाओं को जो बहुत प्रभावशाली है, जिससे तुम्हारी भी शांति हो जाएगी और जगत को भी सुख और शांति मिलेगी। भक्ति योग के द्वारा तुम इसका समाधि में दर्शन करो। तो उन्होंने समाधि में दर्शन करके भागवत का प्रकाश किया। ठीक वैसे ही वाल्मीकि जी का रामायण उन्होंने लिखा नहीं, वो वाल्मीकि जी का बनाया हुआ नहीं है। क्या है? समाधि में अनुभव राम की लीलाएं हैं। भगवान की लीलाओं को कोई बतला बना नहीं सकता, कौन बनाएगा, किसको सामर्थ्य है? ये समझने के लिए भी ऐसी पारमार्थिक बुद्धि चाहिए। हमारे व्यास जी ने पुराणों को लिखा नहीं, हमारे वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं रामायण को, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को, भाई आंख में लगता है बहुत जोर से, ये भी आंख में लगता है, और दो दोनों दे बिंदु